ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥം സ്കന്ധ പഞ്ചമാധ്യായം ശ്ലോക സംഖ്യ 29. ഇസ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാൻ മേ പ്രവേശ് കർനെ സേ പെഹ്ലെ ഗുരു ഓർ ഗൗരംഗ സേ കൃപ യാചന കർത്തെ ഹുവേ മംഗളാചരണ കരേ താക്കി ഹം ജോ അധ്യയൻ കർ രഹേ ഹൈ ഉസ്കാ പൂരാ പൂരാ ലാഭ പ്രാപ്ത ഹോ സകേ ജോ കി ഹൈ കൃഷ്ണ പ്രേം കി പ്രാപ്തി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഃ കദാമഹയം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദൈവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയ മുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിരഭവതി നൈഷ്ഠികേ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാര ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധാര ശ്രീവാസതി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാപുരാണ കീ ജയ ഹോ. പഹലാ സ്കന്ധ പാഞ്ചവാ അധ്യായ ജിസ്കാ ശീർഷക് ഹൈ നാരദ് ദ്വാരാ വ്യാസ് ദേവ് കോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കാ ഉപദേശ് ദേന. ശ്ലോക നമ്പർ 29. കൃപയ നാരദ് മുനി ജി കി മുഖാരവിന്ദ് സേ നിക്ലേ ഹുവേ ഇൻ അമൃതമയ ശബ്ദോ കോ മേരെ സാത് സാത് ഉച്ചാരണ കർനേ കാ പ്രയാസ് കീജിയേ. തസ്യൈവം മേനുരക്തസ്യ പ്രസിദ്ധസ്യ ഹതൈന സ ശ്രദ്ധാധാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച തസ്യൈവം മേനുരക്തസ്യ പ്രസിദ്ധസ്യ ഹതൈന സഹ ശ്രദ്ധാധാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച തസ്യൈവം മേനുരക്തസ്യ പ്രസിദ്ധസ്യ ഹതൈന സഹ ശ്രദ്ധ अथधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च तस्यैवं मेनुरत्तस्य प्रषित्तस्य हतैन सह श्वत्तत्थधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रषित्तस्य हतैन सह श्वत्तत्थधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रषित्तस्य हतैन सह श्वत्तत्थधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च शब्दों का अर्थ तस्य अर्थात उसका एवं इस प्रकार में मेरा अनुरक्तस्य उनसे आसक्त प्रश्रुतस्य अर्थात आज्ञाकारी का हत अर्थात मुक्त एनम पापों से श्रद्धधानस्य अर्थात श्रद्धावान बालस्य बालक का दान्तस्य संयमी का अनुचरस्य उपदेश का दृढ़ता से पालन करने वाले का च तथा अनुवाद में उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्त के पद तक उठना चाहता है उसके लिए ये आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए, उसे छद्म भक्त के कारण गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। उसे शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र बनना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्णतया भगवान की शरण में रहता है। वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक के रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से वंचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नवदीक्षित भक्त को श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत सुंदर गुण बता रहे हैं नारद मुनि कि जब उन भक्तों का सानिध्य मुझे प्राप्त हो गया तो जैसे उन्होंने कल श्लोक 28 में बताया संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवृत्ता नरजस्तपोतमोपः कि भक्ति जो है वो प्रवाहित होने लगी। क्यों? मुनिभिर्महात्मभिः क्योंकि मुझे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो गया था। बस भक्तों, शुद्ध भक्तों का संग यदि हमें प्राप्त हो जाए तो फिर भक्ति प्रवृत्ता, बहुत भक्ति में उन्नति होने लगती है। और श्री नारद जी ने बताया, भक्ति ही प्रवृत्तात्मा रजस तम उपहा, कि रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो गए। उसके बाद क्या हुआ? तस्य एवं में अनुरक्तस्य, कि अब जब मेरा रजोगुण तमोगुण समाप्त हो गया, तो क्योंकि हमारा ये रजोगुण और तमोगुण है वो हमें क्या करता है, भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है। लेकिन अब रजोगुण तमोगुण समाप्त हो गया, आप शुद्ध सत्व में आ गए हो, तो आप ऐसा खोज करते हो कि अब क्योंकि आसक्ति तो हृदय के अंदर है, प्रेम तो हृदय के अंदर है, अब या तो प्रेम भौतिक वस्तुओं में होगा या फिर आध्यात्मिक वस्तुओं में होगा। जब ये अनुराग खत्म हो जाता है ना, गुणों का जब शिकार बनना नहीं होता है, गुणों से जान छूट जाती है, फिर भक्त में और भगवान में हमारी आसक्ति उत्पन्न होने लगती है। सारा ये प्रॉब्लम जो है ना, वो गुण क्रिएट करते हैं और हमारी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति हो जाती है। भौतिक वस्तुओं से आसक्ति समाप्त हो गई, भक्तों के अंदर और अत्यधिक आसक्ति, यहाँ पर जैसे बता रहे हैं, तस्य एवं मैं अनुरक्तस्य, फिर और भी मेरी आसक्ति उनकी ओर होने लगी। और उसके बाद बहुत ही अच्छा गुण बता रहे हैं कि अगर हम लोग भक्तों के साथ संग भी कर रहे हैं, परंतु यदि उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तभी बोला ना कि प्रश्वितस्य, मैं आज्ञाकारी था, मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करता था। जैसे हमारे भी गुरु महाराज हमें आज्ञा देते हैं कि आपको नियम्स को फॉलो करना है, आपको श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करनी है, प्रभात साधना करनी है, जप कंप्लीट करना है, जो भी हमारे लिए आदेश दिए गए हैं, अगर हम उन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, फिर भले हम जितना भी साधु संग करें या जो कुछ भी अध्ययन करें, उससे फायदा नहीं है। क्योंकि मेन क्या है कि हमें आज्ञा का पालन करना है शुद्ध। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं ना केवल उनकी ओर आसक्त था, परंतु मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करता था। भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। भगवान कहते हैं उनकी आपको सेवा करनी है। सेवा कैसे होती है? भक्तों की सेवा ऐसे नहीं होती है कि आप मतलब उनको कोई भौतिक वस्तुएं प्रदान करो, ये भी है, परंतु मैं शुद्ध भक्तों की कोई आवश्यकता नहीं। उनका एक ही कारण, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वो जीव को भावबंधन से छुड़ाकर कृष्ण के प्रति समर्पण करना सिखाए। और यदि जीव उनकी इस आज्ञा का उल्लंघन करके बाकी उनकी भले कितनी ही सेवा करे, तो उनसे वो प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन यदि कोई भक्त अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं का पालन करके कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, तो वास्तविक सेवा यही होती है कि हम गुरु की आदेशों का पालन करें। और इस तरह से नारद मुनि बता रहे हैं कि मेरी आसक्ति तस्य एवं मेनुरक्तस्य प्रश्रुतस्य हतेन सह। हतेन ऐसा का मतलब होता है कि इस तरह से जब मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करता जाता था, तो मेरे जितने भी एनस मतलब पाप, जितने भी मेरे अंदर पाप थे, सिंफुल रिएक्टिव जितने भी थे, वो सब हृदय से अपराध नष्ट हो रहे थे। भक्तों का संग करने का कितना लाभ है, ये हम सोच भी नहीं सकते। शास्त्र कहता है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। यदि थोड़ा सा भी साधुओं का संग प्राप्त हो जाए, तो हमें वास्तविक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और यही वास्तविक सिद्धि के विषय में आज नारद मुनि बता रहे हैं, तस्य वमेनुरक्तस्य। जैसे जैसे उनके मुखारविंद से मैं इतनी सुंदर सुंदर भगवान के कथाओं का श्रवण कर रहा था, तो प्रश्वितस्य, मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करता था, तो उससे हतेन सह, मेरे समस्त हृदय के अपराध नष्ट हो रहे थे। और अत्यंत ही सुंदर शब्द यहाँ पर उच्चारण किया है, श्रद्धदधानस्य। वास्तव में भक्तों, ये श्रद्धा जो है वही हमें भक्ति में उन्नत कराने का एकमात्र प्रथम बेस जो है। हमारी श्रद्धा पर अगर नहीं बनी होती है, तो भले कितना ही श्रवण कर लें, कितना ही जप कर लें, श्रद्धा यदि नहीं है ना, तो समझो हम कभी भी भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। संशय रहित भगवान कहते हैं, संशय जिसके पास हो भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के शास्त्रों के प्रति, भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। कि जिसके हृदय में संशय है ना, कि पता नहीं भगवान कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं भगवान कृष्ण, हम लोग मान तो रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है, पता नहीं वाकई में वो भगवान है या नहीं है, मैं महामंत्र का जप कर तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं वाकई में ये महामंत्र का ही जप करना है मुझे, या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। हृदय के अंदर अगर ऐसी भावना है ना, तो भगवान कहते हैं आपका कल्याण कभी नहीं होगा। आप भले थोड़ा ही कर रहे हो, भले हम इतना अच्छे से प्रयास नहीं कर पा रहे, जो भी कर रहे हैं, थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा श्रवण कर रहे हैं, थोड़ा सा भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर ये श्रद्धा आवश्यक है कि इसी से कल्याण संभव है, यह कृष्ण का नाम ही हमें सदगति प्रदान करेगा, यह भक्तों का संग ही हमारे जीवन को इन समस्त अपराधों से मुक्त कराएगा, यह कृष्ण का नाम और भक्तों का संग, श्रवण और कीर्तन ही मेरे जीवन का सबसे मुख्य, सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो यदि यह श्रद्धा नहीं है, भगवान के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जान लो श्रद्धा का मतलब क्या है। श्रद्धा का मतलब होता है सत्य को धारण करना, यानी जो सत्य है उस पर विश्वास करना। अब सत्य क्या है, हम अगर अपने शब्दों में बोले ना कि ये सत्य है वो सत्य है, तो हो सकता है कि हमारे अंदर कोई मिस्टेक हो, हम हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हमारी सोच पूर्ण नहीं है, तो हम सत्य ना बता सके, लेकिन जो महाजनों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णवानाम यथा शंभु, उनकी पत्नी उमा देवी, देवी पार्वती, उनसे पूछती है कि सत्संग ही सर्व जीवों का कल्याण करने वाला है, तो बताओ तो सही सत्य क्या है जिस पर हमें श्रद्धा रखनी है। तो शिव जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि मैं अपने अनुभव, मैंने अपना जो प्रैक्टिकल जीवन में जो कुछ भी देखा सुना समझा, उससे मैं अनुभव आपको बता रहा हूँ, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वास्तव में संसार में यदि कुछ सत्य है तो वो भगवान का भजन, जहाँ पर भगवान श्री हरि। अब यहाँ पर हमें इस बात पे भी जम कर बैठना है कि केवल हरि का नाम दिया है। हरि जानते हैं किसको बोलते हैं? वैसे तो हरि के अनेकों अर्थ हैं, लेकिन अगर सरल शब्दों में बोलूं तो हरि का मतलब है हरण करने वाला। वास्तव में भक्तों, संस्कृत में चोर को हरि कहते हैं, हरि का मतलब होता है हरण करने वाला, चुरा लेने वाला। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं सत्य हरि भजन, वो जो चोर है उसका यदि भजन करोगे तो वही सत्य है। तो ये तो कोई ना पता नहीं चलेगा कि कौन चोर है, बहुत सारे चोर हैं संसार में, लेकिन सबसे बड़ा चोर, चोरों का सरदार यानी हमारे प्रभु सबसे बड़े चोर हैं। कैसे? तो शास्त्र कहता है ब्रजी प्रसिद्धम नवनीत चोरम। वो क्या चुराते हैं? ब्रज में माखन चोरी में प्रसिद्ध हैं। बस माखन ही चुराया नहीं, आगे कहते हैं श्री गोपिकानां विपुलकित चोरम, अर्थात गोपियों के वस्त्र भी चुराते हैं, और उसके अधिक वो केवल इतना ही नहीं करते। संसार के चोर तो हीरे चुराते हैं, धन चुराते हैं, किसी की मोबाइल चोरी कर देते हैं, किसी का और मतलब वास्तविक भौतिक वस्तुएं चोरी करते हैं, मगर ये जो गोकुल का चोर है वो तो जीवों का हृदय ही निकाल के चोरी कर देता है। तो कहते हैं किसका हृदय चुराया? श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, श्रीमती राधारानी के हृदय को ही चोरी कर दिया। चोरागण्यम शरम प्रपद्ये। ये चोर नहीं, ये तो चोरों का सरदार है। इसीलिए शिव जी कहते हैं कि सत्य हरि भजन, ये जो सबसे बड़ा चोर है ना, उसका भजन करना है। वैसे शास्त्रों में हरि शब्द के अनेक अर्थ, शास्त्र कहता है हरि शब्द अनेक अर्थ, दो ही मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन, कि आप करेगा क्या, समस्त आपके अमंगल हरण कर देगा, आपके हृदय के जितने अपराध हैं उनको खत्म कर देगा, आपके जीवन में आने वाले हर कष्ट को हरण कर देगा, और देगा क्या, अपना प्रेम देगा और तुम्हारा हृदय छीन लेगा। तो वास्तव में उसी हरि का भजन यदि हम करते हैं तो वही सत्य है, उसी से हमारा कल्याण होगा। इस बात में श्रद्धा, तो यहाँ पर नारद मुनि बोलते हैं श्रद्धा दानस्य बालस्य, यानी मैं छोटा बालक था और मेरी पूरी श्रद्धा थी कि जो ये भक्त, ये जो साधुगण मुझे बता रहे हैं और ये जो मेरी मुझे आज्ञा दे रहे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन बिताने से ही मेरा कल्याण होगा, मुझे इस बात पर पूरी श्रद्धा थी। और ये कैसे था, वो कहते हैं दान्तस्य। दान्तस्य का मतलब होता है संयमी, विनम्र, जिसके अंदर वास्तव में भक्तों, जब तक हम भक्त बन ही नहीं सकते जब तक हमारे हृदय में विनम्रता नहीं आती, सहनशीलता नहीं आती। तो जिसके अंदर विनम्रता और सहनशीलता होती है उसको दान्तस्य कहते हैं, वह संयमी होता है। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आप विनम्र नहीं हो, यदि आपके अंदर संयम नहीं है, तब तक आप भगवान के पवित्र नाम का जप कर ही नहीं सकते हो, है ना। वे कहते हैं त्रणादपि शुनी छे न तरोरपि सहिष्णु न, घास के तिनके से भी कम अपने आप को समझकर अब उतना आपको विनम्र रहना है और वृक्ष से भी अधिक सहनशील रहना है। यदि ये क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती हैं तो आप स्वतः दूसरों को मान दोगे, अपने लिए मान की इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि अपने आप को तो आप बहुत ही कम तर समझते हो। तो यदि आप अपने लिए जिस जीव को ये मन में इच्छा होगी कि मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता कभी भी। वो प्रचारक बन सकता है, बड़े बड़े प्रचार प्रवचन कर सकता है, लेकिन डिवोटी आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं होगी, जब तक आपके अंदर सहिष्णुता नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अवानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, वही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सदैव कर सकता है, जो सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है वही भगवान का भक्त बन सकता है। तो ये समस्त क्वालिटीज जो है वो नारद मुनि ने अपने अंदर विकसित की थी, कैसे, केवल साधु संग से। यहाँ कह रहे हैं कैसे मैंने किया, अनुचरस्य, उपदेशों का दृढ़ता से पालन किया, जो जो मुझे वो बोला, उन्होंने जो भी मुझे आदेश दिया मैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करता था और मैं बहुत विनम्र था। अनुवाद में जैसे बताया श्री प्रभुपाद ने कि मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, तस्यैव मे अनुरक्त से बहुत आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो गए थे, हतय न सह, सारे पाप नष्ट हो गए थे। श्रद्धा दानस्य, हृदय के अंदर पूर्ण श्रद्धा थी, बालक था मैं लेकिन फिर भी संयमी था, यानी अपने इंद्रियों को मैंने वश में किया हुआ था। और तद दान्तस्य अनु दान्तस्य अनुचरस्य, उनकी आज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करता था। वास्तव में भक्तों, अगर हमें जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसका यही एक रास्ता है। शास्त्र कहता है महत सेवम द्वारम अपूर मुक्तये, यदि आप साधु पुरुषों की संगति करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनको प्रसन्न करोगे तो आपके लिए मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं। केवल शुद्ध भक्तों की सेवा करने से, यही नारद मुनि हमें आज उपदेश दे रहे हैं कि मेरे अंदर कोई क्वालिटीज नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी था, मैंने बहुत बड़ा ना कुछ ऐसा कार्य किया जिसके कारण मुझे इतना इतनी बड़ी पदवी, यहाँ तक कि देवताओं का भी मैं गुरु बन गया, ऐसा मेरे अंदर और कोई क्वालिटी नहीं थी। मैंने क्या किया, महत सेवम द्वारा अपूर मुक्त ये महत सेवम, सिर्फ साधु पुरुषों का संग किया, उनकी सेवा की, उनको प्रसन्न किया, तो मेरे लिए मुक्ति के दरवाजे खुल गए। और आगे शास्त्र कहता है तमो द्वारम येषित संगी संगम, लेकिन अगर हम भक्तों का संग नहीं करते हैं तो भौतिकवादी व्यक्तियों का संग करते जो सदैव इंद्रिय तृप्ति से आसक्त रहते हैं। देखो जीव कभी भी संग से रहित नहीं रह सकता, अकेले जीव नहीं रहता, किसी न किसी के साथ उसको अपनी किसी न किसी का तो संग करेगा, या तो भौतिकवादी लोगों का संग करेगा या तो फिर आध्यात्मिक के लोगों का संग करेगा, भक्तों का संग करेगा। तो इन दोनों के संग में क्या अंतर है, इतना सुंदर यहाँ से हमें इस नारद मुनि के जीवन से उदाहरण पता चलता है कि उन्होंने केवल भक्तों का संग किया और उनको इतना श्रेय मिला। और यहाँ शास्त्र कहता है तमो द्वारम योषित संगी संगम, अगर आप भौतिकवादी व्यक्ति जो सदैव इंद्रिय तृप्ति से आसक्त रहते हैं उनकी संगति से, कि अगर उनका संगति आप करोगे तो हम उसे क्या होगा, हम अपनी वास्तविक जो हमारी वास्तविक स्थिति है, हमारी वास्तविक पहचान है, उसको भूलकर अज्ञानता में गिर जाएंगे, हम भगवान को भूलकर बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। वास्तव में भक्तों केवल ऐसा बताया जाता है संग तारे और संग बोरे, ये जो संगति है ना उसी के कारण हम या तो फिर मुक्त हो सकते हैं या तो नरक में जा सकते हैं। तो हम अगर सबसे ज्यादा देखो हमने, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि जैसे ही तुम वैष्णव बनना चाहते हो, अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल को देखो कि कहीं वहां पर कोई असत्य भाषा, जैसे हमने अभी सत्य की भाषा की तो उसके अपोजिट जो कुछ भी है, यानी भगवान से पृथक करके आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी आप वो आपके मित्र होते हैं या आपके संगी होते हैं, अगर भगवान से पृथक किसी चीज में आपको आनंद प्रदान करने का प्रयास करा रहे हैं तो वो असत्य है। चैतन्य महाप्रभु हमें रिस्ट्रिक्शंस देते हैं कि उनका आपको त्याग करना होगा यदि आप भक्ति में उन्नति करना चाहते हो। तो हमें नारद मुनि बता रहे हैं कि सत्य के मार्ग में प्रवेश करने का प्रथम द्वार क्या है, भक्तों का संग, क्योंकि यदि हम भक्तों का संग करते हैं विनम्रता के साथ उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में इतना हमारे जीवन में कल्याण हो जाता है, हमारा इतना आनंद प्राप्त होता है, स्वयं भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी क्वालिटी की आवश्यकता है जो नारद जी कहते हैं श्रद्धा दधानस्य। वास्तव में भक्तों अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। नारद मुनि कहते हैं कि उनको भगवान और भक्तों के शब्दों पर पूरा विश्वास था, और ये श्रद्धा ये विश्वास कैसे प्राप्त होता है, ऐसी श्रद्धा तभी मिल सकती है जब हम महात्माओं के मुख से श्रवण करते हैं। श्रवण करना अत्यधिक आवश्यक है। नवदा भक्ति में पहली जो वस्तु है, पहला जो अंग है वो है श्रवणम। यदि हम शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करते हैं तो इसी से हमारे हृदय में अपराध नष्ट होते हैं, श्रद्धा उत्पन्न होती है और हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, और यही श्रद्धा हमको जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई में पार ले जाती है, हमारी इतनी सहायता करती है। ना सिर्फ इस संसार में ही श्रद्धा हमें बल देती है, परंतु जब हम मृत्यु के मुख पर होते हैं तो भी हमें पूर्ण शांति प्रदान करती है, क्योंकि हमें पता होता है जिसको श्रद्धा है कि भगवान का नाम मैंने लिया है और अभी मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसे श्रद्धा है कि कृष्ण मेरा कल्याण अवश्य करेंगे, कृष्ण मेरी दुर्गति नहीं होने देंगे। ये श्रद्धा हमें जीवन के हर स्टेप में जो है वो आनंद प्रदान कर रही है, चाहे हम मर रहे हो, चाहे संसार की सबसे भयंकर स्थिति क्यों ना हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन यदि शांति है, श्रद्धा है, तो शांति और पूर्णता प्रदान होती है। बिल्कुल निराशा की अवस्था में भी ये श्रद्धा हमें आशा दिलाती है। इसी श्रद्धा के द्वारा जीवन की हर स्थिति में हम माया के आक्रमण से खुद को बचा सकते हैं। यही श्रद्धा हमें आध्यात्मिक आकाश तक पहुंचाती है। इस संसार में इस श्रद्धा से मूल्यवान वस्तु कोई हो सकती है? कदापि नहीं। हमारे पास भले कितना धन हो, वो क्या कर सकता है? इस संसार में हम भले कितनी ही उन्नति प्राप्त कर लें, कितना ही एजुकेशन प्राप्त कर लें, कितना ही धन प्राप्त कर लें, कितनी हाईएस्ट सोसाइटी में हमारा नाम प्राप्त हो जाए, तो क्या ये कार्य कर सकता है वो कि सबसे भयंकर स्थिति में हमें आनंद प्रदान करे? क्या मृत्यु के समय ये धन दौलत और बड़ी बड़ी ऊंची डिग्रियां हमारे काम आ सकती है? केवल ये श्रद्धा ही है जो हमें बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। ये श्रद्धा ही है जो हमें जीवन की हर कठिनाई में आनंदमय स्थिति तक पहुंचा देती है। जहाँ पर श्रद्धा है वहाँ पर कोई दुख नहीं है, क्योंकि जब दुख होता है फिर भी श्रद्धावान व्यक्ति को पता है कि कृष्ण मेरे साथ बुरा नहीं करता, ये दुख में भी अवश्य कोई न कोई भलाई होगी। ये इस पूरी सृष्टि में श्रद्धा से बढ़कर मूल्यवान और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। तो ये श्रद्धा किसको प्राप्त होती है? ये श्रद्धा हर व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जिसके अंदर वो क्वालिटीज हो जो कि नारद मुनि के अंदर है। जो वो व्यक्ति जो नम्रता पूर्वक महात्माओं से श्रवण करेगा, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो, वो क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई महत्व नहीं है कि वो छोटा बच्चा है, अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, किसान है, शूद्र है, वो कुछ भी है। नारद मुनि के पास क्या था? एक शूद्र का छोटा बच्चा ही तो था, कुछ भी उसके अंदर ज्ञान नहीं था। कोई अभी देखो जंगल में रहने वाले हम लोग कैसे बोलते हैं, ये जंगल में रहते हैं ना इसलिए सोफिस्टिकेटेड लाइफ नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर भी यदि महात्माओं के संग विनम्रता से उन्होंने भी श्रवण किया तो वो देवताओं के गुरु बन गए, देवर्षि बन गए। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े महान भक्त बने ना वो नारद मुनि के शिष्य हैं। प्रहलाद महाराज किसके शिष्य हैं? नारद मुनि के। दुरु भगत किसके शिष्य हैं? नारद मुनि के। वेद व्यास जी जो समस्त वेदों के रचयिता हैं वो किसके शिष्य हैं? नारद मुनि। वाल्मीकि जिसने रामायण को लिखा वो किसके शिष्य हैं? नारद मुनि के। तो नारद मुनि कैसे नारद मुनि बने वो बता रहे हैं कि केवल भक्तों का संग किया और उन शुद्ध भक्तों जो महात्माओं ने जो वचन कहे उनसे श्रवण किया और पूरी श्रद्धा रखी कि इन्हीं वचनों से मेरा कल्याण होगा, इंद्रिय तृप्ति की ओर आसक्ति नहीं की, केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करने में ही हृदय को संतुष्ट रखा। तो महात्मा और शुद्ध भक्तों के जो वचन होते हैं वो हमारे हृदय में इस अनंत श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं जो हमारी आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। वास्तव में आत्मा को पता है कि मेरा कल्याण कृष्ण की भक्ति से ही होगा, लेकिन क्योंकि ये भौतिक गुणों का आवरण है जिसके कारण आत्मा अपने स्वाभाविक स्थिति को भूल जाती है, तो जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो हमारी आत्मा इस वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक स्वभाव को पुनर प्राप्त कर लेती है। इसलिए इस बात पर बार बार शास्त्रों में जोर दिया जाता है कि मानव का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है साधु पुरुषों के साथ सत्संग करें। और ऐसे साधु पुरुषों को कैसे पहचाना जाता है, वो क्या संदेश देते हैं? हम ये देखते हैं कि जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना केवल और केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही पॉसिबल है। श्री श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तविक भक्त जो है वो क्या उपदेश देते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि दूसरे लोगों को दर्शन शास्त्र में पराजित कर दें, वो बताएं कि भाई हाँ हमें इतना सारा ज्ञान है ये है। नहीं, वो केवल इतना बोलते हैं, उनका इतना उद्देश्य केवल इतना होता है, वो जो भी बोल रहे होते हैं, जो भी दर्शन दे रहे हैं, जो भी फिलोसफी है उनके पास, वो केवल और केवल भगवान लोगों को भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए है। भगवान के साथ तुम्हारा संबंध क्या है, उस संबंध को समझाओ। एक भक्त यदि आपको ये याद दिलाता है कि आप भगवान के अंश हो, तब तक सुखी नहीं रह सकते जब तक कि भगवान के साथ अपना संबंध निर्माण नहीं कर लो। और वो संबंध कैसे निर्माण होगा? भक्ति कार्यों से, श्रवण करने से और कीर्तन करने से, यानी अभिधेय। और इस श्रवण कीर्तन का अभिधेय उसके बाद प्रयोजन क्या है, भागवत प्राप्ति, भागवत प्रेम की प्राप्ति। तो जो ये बताते हैं जीवन के लक्ष्य के विषय में बताते हैं कि केवल कृष्ण प्रेम ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तो यही साधुओं का एकमात्र लक्ष्य है कि लोगों को नाम जप के लिए प्रेरित करना, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम हमारे हृदय की संपूर्ण अशुद्धि को निकाल कर हमारी चेतना में क्रांति पैदा कर सकता है। सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य ये है कि हम अपने प्रयास से किसी के हृदय में भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें। यही एक शुद्ध भक्त का काम है कि किसी कोई जो भौतिक सृष्टि में जो जीव है उनको भौतिक वस्तुओं से भले कितना ही अटैचमेंट है, किसी तरह से उनको भगवान का नाम दे दो बस। बाकी जब उसने भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया तो बाकी आगे का काम वो खुद ही नाम ही करेगा। तो जो पूर्ण रूप से भगवान के नाम के प्रति समर्पित हो जाता है उसको सब कुछ पता चल जाता है। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वतम ददामि बुद्धि योगम, मैं उसे खुद ही बुद्धि दूंगा। पहले तुम भक्तों का क्या काम है कि तुम उसे भगवान के नाम के प्रति प्रेम उसका हृदय में उत्पन्न करो, श्रद्धा उत्पन्न करो। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान भगवान का नाम है। क्यों? क्योंकि उससे हृदय पवित्र होता है। चेतो दर्पण महाजनम दावा महाग्नि निर्वापनम, ये जो दुखों भरा ज्वाला, दुख जैसे ज्वाला है होती है अग्नि की इस तरह भड़कता हुआ जो संसार है, उससे बचने का केवल एकमात्र तरीका है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। और जब हम सच्ची महात्माओं से श्रवण करते हैं और सेवा भाव रखते हैं तो हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। सबको पता है भगवान का नाम ही कल्याण करेगा। मरते हुए हर कोई देखता है कि उसको बोला जाता है कि तुमने जो कमाया, जो भी एजुकेशन प्राप्त की, वो सब यहाँ रह जाएगा और लेके जाओगे भगवान का नाम। ये पता है भगवान का नाम तुमने जो लिया है वही तुम्हारे काम आएगा, वही तुम्हें भगवान के धाम ले गया। लेकिन इस नाम के प्रति जो श्रद्धा है वो हमें सच्चे महात्माओं के द्वारा श्रवण करने से उत्पन्न होती है, उनकी सेवा करने से उत्पन्न होती है। तो हम हृदय में जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। हरि नाम कीर्तन से हमारे हृदय के अंदर जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है और यही हमारी आत्मा की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। आत्मा भटक रही है, तड़प रही है, बारंबार भौतिक वस्तुओं के जाल में फंसकर ये सोचने लगती है शायद इससे तृप्ति होगी, परंतु जब तक भगवान से प्रेम नहीं करती, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करती, तब तक हमारी आत्मा की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भी नम्रता पूर्वक भिक्षा मांगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते थे कि आप कृष्ण का नाम लो, वही आपके जीवन को पूर्ण करेगा। तो उनके नम्र सेवक होने के रूप में हमें भी यही भिक्षा मांगनी है कि भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम ही आपके जीवन को सफल करेगा, भगवान के नाम से ही आपके जीवन का कल्याण होगा। और इसी से हम चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं कि लोगों को भगवान के नाम के प्रति आकर्षित करें, उनकी श्रद्धा को डिवेलप करें। जब जीवों की श्रद्धा भगवान और भगवान के नाम के प्रति उत्पन्न होगी तो आगे का कार्य स्वयं ही हो जाएगा। और हमारे हृदय के अंदर यह बल कैसे मिलेगा, जब हम साधु पुरुषों से श्रवण करेंगे। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। तो हमारा ये कार्य है कि इसको आगे बढ़ाएं और जो भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति जिनका आकर्षण नहीं है तो विनम्रता पूर्वक हृदय से उनको ये प्रार्थना करें कि आपका कल्याण केवल इसी में है, कैसे भी करके भगवान के पवित्र नाम का जप करो, इसी से आपके इस मनुष्य जन्म को आप सफल कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।